हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद खाना खाने के लिए नीचे गया हुआ था। वो शिवांशा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी साड़ी खुलने की वजह से वो नीचे नहीं जा पाई। वेद के जाते ही शिवांशा तुरंत अपने कमरे में आई और उसने दूसरी हल्की साड़ी पहनी। साड़ी खुलने के चक्कर में वो ये बात भूल गई थी कि अंकुश ने उसे जो जहर की शीशी दी थी वो उसकी साड़ी से निकालकर नीचे गिर गई थी। साड़ी बदलने के बाद शिवांशा ने उस बोतल को टटोलने की कोशिश की तो वो अपनी जगह पर नहीं थी। उसने जल्दी से घबरा कर कहा, अरे नहीं, वो बोतल कहाँ चली गई? अगर उसे किसी और ने देख लिया तो सबका शक मेरे ऊपर ही जाएगा। अभी तो सब नीचे हैं, मुझे उसे ढूंढ लेना चाहिए। हे भगवान, प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, पर मेरी भी मजबूरी है। शिवांशा जल्दी से बाहर आई तो उसे सीढ़ियों पर रानी जाती हुई दिखाई दी। रानी की बोतल रानी के हाथ लग चुकी थी और उसे लगा ये वेद की कोई दवाई है, इसीलिए रानी उसे वेद को देने जा रही थी। शिवांशा ने जल्दी से अपनी साड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और दौड़ते हुए उसके पीछे गई। रानी को नीचे उतरने में कुछ ही सीढ़ियां बाकी थीं कि शिवांशा ने जाकर उसे पीछे से पकड़ लिया। रानी ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ बड़ी भाभी, आप इस तरह घबराई हुई क्यों लग रही हैं? इस तरह मेरे पीछे दौड़कर आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे आवाज लगा देतीं, कुछ चाहिए था क्या? रानी अपने बेपरवाह अंदाज में बोल रही थी, जबकि शिवांशा की नज़र उसके हाथ पर टिकी हुई थी। रानी ने वो बोतल अभी भी अपने हाथ में पकड़ी थी। शिवांशा ने जल्दी से बोतल रानी के हाथ से ले ली। रानी ने उसे इतना कसकर भी नहीं पकड़ा था। शिवांशा के ऐसा करने पर वो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। ये मेरी है और आगे से मेरी कोई भी चीज लेने से पहले मुझे पूछ लेना, शिवांशा ने हल्की सख्ती के साथ कहा। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मुझे लगा वेद भैया की दवाई है तो मैं उन्हें देने जा रही थी। ठीक है, आगे से कोई भी काम करूंगी तो आपकी इजाज़त ले लूंगी। वैसे आज तक मुझे इस घर में किसी ने ऐसा नहीं कहा, रानी नाराज होते हुए बोली। उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। पिछले दिनों में आसपास रहते हुए शिवांशा ने उसे थोड़ा बहुत जान लिया था। इससे पहले कि वो रोकर तमाशा खड़ा करती, शिवांशा ने खुद को शांत करके कहा, वो बात नहीं है, तुम नहीं जानती ये दवाई मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। बस इसी वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। रानी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शिवांशा जल्दी से वापस ऊपर आ गई। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि रानी उस बोतल को लेकर वेद के पास नहीं पहुँची थी। आज तो बच गई हूँ, लेकिन मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। आई होप कि वो नीचे जाकर किसी से हमारी बहस के बारे में ना कहे, शिवांशा ने परेशान स्वर में कहा और फिर उस बोतल को अपनी साड़ी में छुपा लिया। वो उस बोतल को कहीं और रखकर रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वहीं शिवांशा के थोड़ा सख्ती से बात करने पर भी रानी मुंह फुलाए हुए नीचे पहुंची। उसका चेहरा देखकर आराध्या ने पूछा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुमने खाना नहीं खाया क्या? खाना तो खा लिया, लेकिन न जाने बड़ी भाभी को किस बात पर गुस्सा आया हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वो सामान उनका है, वरना मुझे हाथ तक नहीं लगाती। बेवजह मुझे डांट दिया, रानी ने शिकायत करते हुए कहा। उसकी शिकायतों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि सबको पता था कि रानी की आदत थी छोटी सी बात को बड़ा बताना। लेकिन शिवांशा का जिक्र होते ही वेद ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वेद ने मन ही मन कहा, कितना झूठ बोलती है ये लड़की, वो तो ठीक से बोल तक नहीं पाती। किसी को डांटना तो दूर की बात है, उसका तो कोई सामान नहीं है जिसके लिए वो हक जताती होगी। न जाने ये सब उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वेद समझ सकता था कि उसके सामने कोई भले ही कुछ न कहे, लेकिन कहीं न कहीं नव्यांशी, वंश और रानी की आंखों में शिवांशा के लिए नापसंदगी साफ जाहिर होती थी। इससे पहले कि रानी की बातें सुनकर कोई इस मामले को ज्यादा कुरेदने की कोशिश करता, वेद ने सख्त आवाज में कहा, मेरे फ्लोर पर सफाई करने के अलावा बेवजह मत जाया करो। अब बातें बनाना बंद करो और उसके लिए खाना लेकर जाओ। लेकिन वेद भैया, रानी ने अपना मुंह खोला ही था कि नव्यांशी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या कह रहे हैं? जाकर भाभी के लिए खाना लेकर ऊपर पहुंचो। भाभी तो क्या, भैया के सामान को कोई और हाथ लगाए तो मुझे भी पसंद नहीं है। तो आगे से उनके फ्लोर पर बेवजह किसी भी चीज को टच मत करना। रानी आगे कुछ कहती उससे पहले आराध्या ने उसे शांत रहने को कहा। रानी ने एक प्लेट में खाना सर्व किया और फिर ऊपर लेकर शिवांशा के पास जाने लगी। सब लोग मुझे ही क्यों सुना रहे हैं? मैंने वेद भैया के सामान को हाथ में लगाया ही नहीं। कैसे बताऊं कि वो किसी दवाई की शीशी को लेकर मुझे डांट रही थी? ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे मैंने उसका कोई सोने का खजाना चुरा लिया हो। न जाने क्यों सबने उसे सर आंखों पर बिठा कर रखा है, खासकर वेद भैया ने। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो, रानी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा और शिवांशा के लिए खाना लेकर ऊपर पहुंची। रानी के चेहरे के भाव देखकर शिवांशा समझ गई थी कि वो अब तक उससे नाराज है। अपनी परेशानी में शिवांशा ने सच में उस पर बुरी तरह चिल्ला दिया था, वरना वो किसी से इस लहजे में बात नहीं करती थी। लीजिए, खाना खा लीजिएगा। किसी चीज की जरूरत है तो अभी बता दीजिए, वरना आप पीछे से भाग कर आएंगी और बिना मेरी गलती के मुझे ही डांट देंगी, रानी ने मुंह बनाकर कहा। शिवांशा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर प्यार से बोली, मैंने कहा ना, मैंने अपनी परेशानी में तुम्हें डांट दिया था। अपनी बड़ी बहन समझकर मुझे माफ कर दो, लेकिन आप मुझसे छोटी हैं। मुझसे तो क्या, आप इस घर में सबसे छोटी हैं और वेद भैया सबसे बड़े, रानी ने कहा। फिर उसने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा। उसे लगा कि उसके और वेद के उम्र के फासले को बताने की वजह से कहीं शिवांशा फिर से उसे डांट न दे। उसने जल्दी से कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाहती थी कि वेद भैया सबसे बड़े हैं तो सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे बुरा नहीं लगा और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो मुझसे इतने बड़े हैं। जैसे तुम लोग उनकी इज्जत करते हो, वैसे मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत इज्जत और सम्मान है, शिवांशा ने हल्का मुस्कुराकर कहा। हालांकि उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि वो वेद की इतनी इज्जत क्यों करती थी, जबकि वो तो उसे मारने के लिए यहाँ लेकर आया था। यहाँ तक कि वेद ने उसके पूरे परिवार तक को खत्म कर दिया था, फिर भी न जाने क्यों उसके दिल में वेद के लिए कभी नफरत पैदा नहीं हुई। शिवांशा रानी से काफी प्यार से बात कर रही थी, इसलिए रानी का मूड भी ठीक हो गया था। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं भी बातों बातों में कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ और दूसरों की बातों का बुरा भी लग जाता है। मुझे पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था, पर मैं भूल गई थी कि आप भी यहाँ रहने लगी हो। कोई बात नहीं, आगे से मैं अपनी चीजों को संभाल कर रखूंगी ताकि तुम्हें डांटना ना पड़े, शिवांशा बोली। ठीक है, खाना खा लीजिएगा, रानी ने इतना ही कहा और फिर वहां से जाने को हुई। दरवाजे से निकलते हुए उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, पर वेद भैया की पत्नी नहीं लगती। रानी वहां से चली गई थी। उसके जाते ही शिवांशा ने राहत की सांस ली। फिर उसने एक नज़र खाने की तरफ देखा। शिवांशा का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। अंकुश ने उसे जो काम दिया था उसकी वजह से वो पहले से ज्यादा परेशान रहने लगी थी।
शिवांशा खाने की तरफ देख रही थी, इस बीच वेद वहां आ गया। उसने शिवांशा को इस तरह खाने को घूरते हुए देखकर कहा, इसे देखकर मन नहीं भरना है, खाकर पेट भर जाता है, चुपचाप खत्म करो। वेद के सामने आते ही शिवांशा बिल्कुल एक ओबीडियंट बच्ची बन जाती थी। उसने बिना किसी बहस के सर हिलाया और धीरे धीरे खाना खाने लगी। वेद आगे उसे कुछ कहता उससे पहले उसके पास प्रतीक का कॉल आया। वो उसी के फ्लोर पर स्टडी रूम में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जब तक मैं वापस आऊं ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए, वेद ने शिवांशा को ऑर्डर देते हुए कहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। शिवांशा को खाने के साथ छोड़कर वेद प्रतीक के पास पहुंचा। उसने प्रतीक को शिवांशा के भाई को ढूंढने का काम सौंप रखा था। अंदर आते ही वेद ने प्रतीक से धीमी सख्त आवाज में पूछा, कुछ पता चला इस लड़की के भाई के बारे में?
नहीं, कुछ पता नहीं चला, पर एक बात साफ है कि राजावत फैमिली सालों से बहुत बड़ा खेल खेल रही है। अंकुश को काफी बार अजीब सी जगह पर जाते हुए देखा है, लेकिन उसकी गाड़ी आगे जाकर गायब हो जाती है और फिर वो नहीं मिलता। उसने सच में इस लड़की के भाई को किडनैप करके रखा होगा, वैसे भी वो काफी गिरा हुआ इंसान है, प्रतीक ने जवाब दिया। उसकी आवाज से गुस्सा जाहिर हो रहा था। वेद ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर कहा, हमें इसके भाई को अंकुश के चंगुल से निकालना ही होगा। मुझे डर है कि अंकुश इसके भाई को लेकर इसे जरूर ब्लैकमेल करेगा। ये हमारे आसपास रह रही है तो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं देवराज ठाकुर के खून पर यकीन नहीं कर सकता। आपका कहना भी सही है, उसने आपको बेवजह फंसा दिया है। आप घर वालों से कितना भी सच छुपाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन बुराई को दूर से ही महसूस किया जा सकता है। नव्यांशी और बाकी लोगों को ये पसंद नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी उसका आपके आसपास रहना अच्छा नहीं लगता। वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है भाई, प्रतीक ने काफी केयरिंग अंदाज में कहा। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगी। देवराज ठाकुर के आसपास पली होती तो अपने घर लाना तो दूर, उसकी परछाई तक यहाँ नहीं पड़ने देता। राजावत फैमिली ने अपने स्वार्थ के चलते इसे काफी दबाकर रखा है, इसकी जुबान तक नहीं खुलती ठीक से। तो बेफिक्र रहो, वेद ने जवाब दिया। तो आपको उस पर यकीन हो रहा है, प्रतीक ने हैरानी से पूछा। यकीन? मुझे अपनी फैमिली के अलावा किसी पर नहीं है। इस लड़की पर तो कभी नहीं होगा। पर एक बात साफ है कि ये मुझे कुछ नहीं कर सकती, वेद ने सर्ग आवाज में कहा। प्रतीक ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने कुछ पल सोचकर कहा, रिसेप्शन पार्टी जरूरी है क्या? मारना मुश्किल हो जाएगा फिर इसे। हाँ जानता हूँ, पर खुद के ऊपर उंगली नहीं उठने दे सकता, खासकर इसकी वजह से। डायरेक्ट हमने इसके किसी भी परिवार वाले को नहीं मारा है, लेकिन मरने पर मजबूर जरूर किया है। ऐसा ही कुछ इसके साथ करेंगे, ये खुद अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाएगी, वेद ने बिना किसी दया के कहा। शिवानशाह उसका ये रूप अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि वो जानती थी कि वेद ने उसके परिवार को खत्म किया है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से वो वेद के साथ रह रही थी, उसे वो सब बातें छलावा लगने लगी थीं। उम्मीद है ऐसा ही होगा। भाई, मैं चाहता हूँ कि इसके भाई को ढूंढने के बाद उसे इसके पास ले जाने से पहले हम उसे खत्म कर दें, कहीं वो बच्चा भी हमारे लिए मुसीबत ना पैदा कर दे, प्रतीक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। वो भी गलत नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि शिवांशा के चक्कर में कहीं वेद उसके भाई की जिंदगी ना बख्श दे। जिस तरह आज शिवांशा की तबीयत खराब होने पर वेद अपने सारे काम छोड़कर भागा था, प्रतीक को मन ही मन डर लगने लगा था। वेद ने जब तक जवाब नहीं दिया, प्रतीक के दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। तभी वेद ने कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। मैं उसे इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि उसको निशाना बनाकर अंकुश इस लड़की को ब्लैकमेल करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। बच्चे को ढूंढो और खत्म कर दो। मेरे परिवार को खत्म करने वालों के लिए मेरे दिल में कोई दया का भाव कभी नहीं आएगा, चाहे वो कोई बच्चा हो या बूढ़ा। वेद की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। शिवानशाह उसके इस रूप की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे यकीन था कि वेद उसके भाई को ढूंढकर सही सलामत उसके पास पहुंच जाएगा, लेकिन उससे अलग वेद ने प्रतीक को उसे खत्म करने के ऑर्डर दे दिए थे। वहीं प्रतीक के चेहरे पर अब सुकून भरी मुस्कुराहट थी। सालों पहले जो बर्बादी का मंजर चौहान फैमिली ने देखा था, अब उसका सही न्याय होने जा रहा था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। क्या शिवांशा वेद का ये रूप बर्दाश्त कर पाएगी, या उससे पहले ही अंकुश की बातों में आकर वो वेद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? आई होप आपको ये नई कहानी पसंद आ रही होगी। इसके चैप्टर भी बड़े रखे हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।